कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर प्रभु के वचन में बलवंत हो रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम सब यहोशू की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि इसराइली यहोशू की अगुवाई में यरीहो नगर के चारों ओर तुरही बजाते हुए घूम रहे थे, अर्थात चक्कर लगा रहे थे। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने यरीहो नगर का चक्कर लगाया और तब हम पाते हैं कि वे विजयी होते हैं। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को देखेंगे और यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें। पवित्र आत्मा, आप हमें अपने नियंत्रण में ले लें ताकि जब हम आपके वचनों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हम में से प्रत्येक के हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो दुखित हैं, बीमार हैं और निराश हैं। प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि वे भी आपकी निकटता में आकर आपके उन महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस समय हम इससे प्रत्येक के जीवन पर अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम यहोशू के पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 से 20 पद तक को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतर और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। जब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो की शहरपनाह ऐसी गिरी कि भूमि समतल हो गई। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि जब वह यरीहो नगर को देखने के लिए गया तो वहां पर एक अरब गाइड के साथ वह घूमने गया। तब इस गाइड ने जान गारस्टैंग और कैथलीन केनियन के साथ प्राचीन यरीहो के पुरातत्व संबंधी अभियानों में सहयोग दिया था। तब उसने उससे पूछा कि प्राचीन यरीहो के युग के विषय उसकी क्या राय है, क्योंकि गारस्टैंग और कैथलीन केनियन दोनों में इस विषय पर मतभेद है। उसके अनुसार गारस्टैंग ने जो कार्य किया वह वैज्ञानिक विधि पर नहीं था जैसा कि केनियन ने किया था। उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था और अब जो भी वहां आएगा उसके लिए निश्चित समय ज्ञात करना असंभव हो जाएगा। खैर, वे विवाद करते रहें, मेरी रुचि तो इसमें है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीवार गिर गई थी और उसका प्रमाण आज भी उपस्थित है। मेरे मित्रों, विश्वासी जन पुरातत्व वैज्ञानिक के कार्य पर अपना विश्वास आधारित नहीं रखता है। इब्रानियों के पत्री अध्याय 11 उसके 30 पद में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यरीहो विश्वासियों के संसार का प्रतीक है। वह एक दृढ़, अजय और अमंगल है। उस पर जय पाना विश्वास पर निर्भर करता है। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में व्यक्त है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने संसार का सामना करने में विश्वास द्वारा जय पाने का कैसा प्रदर्शन किया है। मेरे मित्र, एक गीत है कि यहोशू ने यरीहो का युद्ध किया। क्या वह लड़ा था? जी नहीं, उसने तो केवल शहर का चक्कर काटा था। युद्ध तो परमेश्वर ने किया था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय भूकंप आया था जब याजकों ने तुरही बजाई थी और लोग चिल्लाए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि इतने अधिक लोगों द्वारा शहरपनाह के निकट चलने के कारण उनकी नींव ढीली हो गई थी और वह गिर गई। इस तर्क को तो आप चाहते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मुझे तो परमेश्वर के वचन की व्याख्या ही स्वीकार योग्य है। अन्य सब व्याख्याएं हास्यपूर्ण है। परमेश्वर विजयी हुआ और इसराइल को वहां का अधिकार प्राप्त हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, आज विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे विजय के लिए यरीहो का युद्ध लड़ना चाहते हैं, परंतु हमें उद्धार के कप्तान से आदेश लेना आवश्यक है कि हमें क्या करना है। अब 2 और बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली, राहाब को मुक्ति मिली। आइए अब हम पढ़ते हैं यहोशू 6 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपने शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिये भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इसराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, अपना वचन निभाते हुए उन्होंने राहाब और उसके घर में उपस्थित सब जनों को सुरक्षित छोड़ दिया। दूसरी बात, यहोशू ने उस नगर का पुनर्निर्माण करने वाले को श्राप दिया। हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं, फिर उसी समय यहोशू ने इसराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित है। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। मित्रों, पहला राजा की पुस्तक के 16वें अध्याय के अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि यरीहो का पुनः निर्माण किया गया और यहोशू का श्राप उसके निर्माता और उसके पुत्र पर आ पड़ा। इस अध्याय के अंत में यहोशू परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा सुनाता है कि वे सब कुछ ध्वस्त कर दें, परंतु सोना, चांदी, पीतल और लोहे के पात्र यहोवा के भंडार में रख दें, उसमें से कोई कुछ न ले। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, और तुम अर्पण की हुई वस्तु से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किसी ने धोखा भी किया था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 7 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्ययन का विषय होगा ऐ नगर पर विजय। मित्रों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मनुष्यत्व है। उसकी वही चमड़ी है जो आपकी है, वही मस्तिष्क है जो आपका है, उसके विनाशक विचार वही हैं जो आपके हैं। वह आपके ही हाथों से अपना काम करता है। यह शत्रु आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। वह आपके दैनिक मसीही जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। मेरे मित्रों, इस शत्रु से व्यवहार करना कठिन है। इसके दो कारण हैं जो इसके साथ व्यवहार करके दो गुना कठिन बना देते हैं। पहला, हम उसे पहचानने से पीछे हटते हैं। हम उसे अपना बैरी कहना पसंद नहीं करते हैं, और सत्य तो यह है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और दूसरा कारण है कि वह हमारे भीतर है। यदि वह बाहर आकर युद्ध करे तो एक अलग बात होगी, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। वह कायर नहीं है, परंतु उसकी आंतरिक स्थिति उसके लिए अधिक अच्छी है। राष्ट्र, नगर, कलिसियाएं, मनुष्य इसी शत्रु के द्वारा नाश हुए हैं। रूस में समाजवाद का राज्य आया, और इसलिए नहीं कि उन पर जर्मन सेना का दबाव था, परंतु इसलिए कि उनके भीतर वह सिद्धांत पनप रहा था। मेरे मित्रों, प्राचीन युग की एक ऐतिहासिक कथा है। ट्रॉय के निवासियों ने यूनानी सेना को 10 वर्ष तक प्रवेश करने दिया, और अंत में यूनानी सेना एक लकड़ी का घोड़ा छोड़कर लौट गई। ट्रॉय वासी वह घोड़ा भीतर ले आए, और वही उनके विनाश का कारण सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कलीसियाओं की हानि का कारण बाहरी नहीं, भीतरी है। प्रभु यीशु ने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को चेतावनी दी, जिनमें एक भी चेतावनी बाहरी शत्रु की नहीं थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 उसके 14 और 15 पद में वह कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बाला को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। उसने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 20 में एक और चेतावनी दी, तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु कलीसियाओं को चिता रहा था कि उनके भीतर ही कुछ न कुछ है जो उनके पतन का कारण है। मेरे मित्रों, अनिष्ठा और विश्वास योग्यता की कमी किसी भी शत्रु से अधिक कलीसियाओं में परमेश्वर के कार्यों को हानि पहुंचाते हैं। शैतान कलीसियाओं को बाहर से नहीं, भीतर से हानि पहुंचाता है। मेरे मित्रों, एक मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, भीतर से ही नष्ट किया जाता है। सिकंदर महान इतिहास का सर्वोत्तम सेनानायक था, जिसके जोड़ का दूसरा कोई भी नहीं था। 35 वर्ष से कम की आयु में उसने विश्व को जीत लिया था, परंतु वह एक शराबी की मौत मरा। उसने संसार को जीत लिया था, परंतु वह सिकंदर महान को जीत नहीं पाया। उसके आंतरिक शत्रुओं ने उसको नाश कर दिया। मेरे मित्रों, प्रतिज्ञा के देश को जीतने में इसराइल एक ही युद्ध हारा, और उसका कारण था भीतर उपस्थित शत्रु। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर इसराइल के समक्ष 3 मुख्य वैरी थे, यरीहो, ऐनगर और गिबोनी। इन 3 वैरियों ने इसराइल द्वारा प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार एवं आनंद को बाधित किया था। वह देश उनके सामने था, और परमेश्वर ने कह दिया था कि वह उनका है। परमेश्वर ने स्वामित्व का अधिकार अब्राहम को भी दे दिया था। उसने यहोशू से कहा था कि जैसा उसने मूसा को वचन दिया था कि जहां भी उसका पांव पड़ेगा वह स्थान उसका हो जाएगा। यहोशू 1 अध्याय के उसे 3 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे कह रहा था, यह सब तुम्हारा है, आगे बढ़ो, अधिकार करो और उसका आनंद लो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। परमेश्वर ने उन्हें 3,00,000 वर्ग मील का क्षेत्र दिया था, परंतु उन्होंने अच्छे से अच्छे समय में भी सिर्फ 30,000 वर्ग मील पर ही अधिकार किया। इसी प्रकार विश्वासियों को सब आत्मिक आशीषें दी गई है, परंतु मेरे विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आज आप कितनी आशीषों का आनंद ले रहे हैं? आपने कितनी आशीषें अपनी बनाई हैं? आपको उनके स्वामित्व का अधिकार दिया जा चुका है, परंतु क्या आप उन पर अधिकार करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका आनंद ले रहे हैं? उन अनेक विश्वासियों के बारे में सोचें जिन्हें सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं, परंतु उनका जीवन आत्मिक कंगाली में है। परमेश्वर ने तो हमें आत्मिक आशीषें दे दी हैं, परंतु उन पर अधिकार करने के लिए हमें युद्ध करके जय पाना है। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमें परमेश्वर के हथियार बांध लेने आवश्यक हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहोशू अध्याय 7 और अध्याय 8 में ऐ नगर पर हार और विजय विश्वासी में लालसा का प्रतीक है। आकान का पाप संपूर्ण छावनी का पाप हो गया था। हम देखते हैं दैहिक पाप के चरण, जैसे मैंने देखा शारीरिक कार्य, मैं ललचाया मानसिक कार्य, मैंने लिया ऐच्छिक कार्य। पाप के निवारण तक उद्धार नहीं है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बाइबल में से पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जप्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। मित्रों, इस पद में इसराइलियों के अपराध का उल्लेख है, परंतु यथार्थ में वह एक ही मनुष्य का अपराध था। आकान ने अपराध किया था। आकान के अपराध का दंड संपूर्ण जाति को भोगना पड़ा था। यह एक रोचक बात है, क्योंकि अनेक जन बाहर से कलीसिया की आलोचना करते हैं, वे कलीसिया की भूल चूक और ईश्वर त्याग की चर्चा करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, परंतु मेरे मित्रों, एक सदस्य होकर कलीसिया की बुराई करना एक बात है और बाहर रहकर कुछ न करना एक अलग बात है। यदि कलीसिया चूक रही है और परमेश्वर से दूर जा रही है, तो आप और मैं भी उसके अंग होने के कारण दोषी हैं। यदि एक सदस्य दोषी है तो सब दोषी हैं। जैसा पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 26 पद में, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यह सच है, क्योंकि हम कलीसिया में एक अंग हैं, और जब कभी एक अंग को अर्थात एक व्यक्ति को तकलीफ होती है तो सारे कलीसिया के लोगों को तकलीफ होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहोशू 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, और यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ है, बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद ले लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, यरीहो संसार का प्रतीक है और ऐ नगर देह का। कुछ पवित्र जन यरीहो का चक्कर काट रहे हैं और तुरही फूंक रहे हैं। वे एक पृथक समूह हैं, परंतु वे अन्यों की नाई नकारात्मक विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि हम यह काम नहीं करते हैं, हम वह काम नहीं करते हैं। सच तो यह है कि वे आत्मिक नग्नता का प्रदर्शन करते हैं। वे सांसारिक बातों का परिपूर्ण त्याग करते हैं। उन्होंने संसार पर जय पाई है, परंतु देह के विषय में उनकी क्या स्थिति है? कलीसिया में सबसे अधिक घातक मनुष्य वे हैं जो महान ढोंगी संत हैं। वे संसार पर जय पाने की बात तो करते हैं, परंतु ऐ नगर आकर हार जाते हैं। किसी किसी की तो जीभ आग उगलती है। मित्रों, मैं बहुत वर्षों से प्रभु के सेवकाय में हूँ और मैं आपको ढोंगियों के बारे में अनेक कहानियां सुना सकता हूँ। देह ने अनेकों को जकड़ रखा है। वे सोचते हैं कि वे मसीही जीवन जी रहे हैं। वे कहते भी हैं कि उनका जीवन जयवंत है, परंतु वे जानते भी नहीं कि ऐसा जीवन कैसा होता है। मेरे मित्रों, जयवंत जीवन मसीह का जीवन है। वही है जो जय पाता है, हम नहीं। मेरे मित्रों, इसराइल विजय के मार्ग पर था, उन्होंने यरीहो को जीत लिया था। यद्यपि वह परमेश्वर की विजय थी, इसराइल ने सोचा कि जय पाना उनका श्रेय था। यहोशू ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि वे अय नगर का भेद लें। अय नगर का निरीक्षण करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यरीहो की तुलना में अय नगर कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में वह एक प्राचीन स्थान और नगण्य है। मेरे मित्रों, कई बार मैं और आप भी ऐसी ही भूल करते हैं। हम लोगों को देख करके आंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने सामर्थ्य का नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करें। हमें चाहिए कि हम उसकी निकटता में आए और उसकी बातों को सुने। यदि मुझे और आपको अपने इस देह पर विजय पाना है, तो परमेश्वर के निकटता में आना है, अपने आप को नम्र करना है और उससे उन आशीषों की मांग करना है, ताकि वह मेरे जीवन में जय को दे। जिस प्रकार से हम पाते हैं कि जो मसीह में हैं, वे ही जयवंत होते हैं। मेरे मित्र, क्या आज आप भी अपनी देह की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं? क्या आप उन बातों में उलझे हुए हैं? क्या आज आप अपना ही निर्णय ले रहे हैं या परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं? आज परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसकी ओर दृष्टि करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जिस प्रकार यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे मित्र, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मेरी यही आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने फिर से एक बार नई बातों को सीखा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देंगे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।